सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जयिधवलङ्गते नाहुर्यसयलभुवनभवनगणो केवलनाणशरीरो अणञ्जणो नामो छन्दो तिथयराचौ वीसवि केवलनाणेन दिट्ठसौवर्था पश्यन्तु शिवसरुवा तिहुवनशिरसे हरामच्छं सो जयै जस्स केवल नाणुज्जलदप्पणं मिलोयालोयं पुढपदिबिम्बं दिशयि वियसियसयवत्तगव्वगौरोविरो अङ्गङ्गभर्जनिं मीय नणायि मच्छन्त निम्मलङ्गाये सुयदेवयम्बाये नमो सया चक्षुमय्याये नमः गुणरयणभरियं सुवर्णाणामियजलोहगहिरमपारं गणहरदेवमहोवहि मणेयणयभङ्गभङ्गितुङ्गतरङ्गं जेनिहकसाय पाहुड मणेयणयमुज्ज्वलम् अनन्तत्थं गाहाहि विवर्यन्तं गुणहरभडारयं वन्दे गुणहरवयणविनिगय गाहाणत्थोवहारियोऽसौवो जेणज्जमङ्कुणासो सणागहत्थीवरं देवु जो अज्जमङ्कुशीसो अन्तेवासी विनागहत्थि स सोवित्तिसुत्तकत्ता जैव स हो मे वरं देहु। यह श्री भगवान गुणहर भट्टारक रचित कषाय पाहुड़ है और उसकी वीर सेनाचार्य रचित धौला टीका है। जो देखो इसका नाम पहले हम देखेंगे क्या क्या लिखा है पहले पृष्ठ पर। हाँ एकदम पहले कषाय पाहुड़ तो पुस्तक का नाम है और इसमें ऊपर लिखा है यति वृषभाचार्य रचित चूर्णी सूत्र समन्वितम फर्स्ट पेज। यानी यति वृषभाचार्य जो हो गए मुनिराज उन्होंने इस कषाय पाहुड़ पर चूर्णी सूत्र नाम की रचना की है और उस पर जय धवल महाधवल जो लिखा है उसमें से श्री वीर सेनाचार्य रचित जय धवला टीका है। यानी इस टीका का नाम जो अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे उसका नाम है जय धवला। धवला के तो अभी हमने 16 पुस्तक पढ़ लिए हैं उनके भी टीकाकार वीर सेनाचार्य रहे और यहाँ भी ये टीकाकार वीर सेनाचार्य ही वो षटखंडागम पर उन्होंने पहले 5 खंडों पर वहाँ टीका लिखी थी और यहाँ जो है वो कषाय पाहुड़ और चूर्णी सूत्र दोनों को मिलाकर उसकी टीका इसमें ली है कषाय पाहुड़ पर और चूर्णी सूत्र पर। कषाय पाहुड़ के करता है गुणधराचार्य और चूर्णी सूत्र के करता है यति वृषभाचार्य और ये जो जयधोला टीका है उसके करता है वीर सेनाचार्य। आगे चलकर हम देखेंगे वीर सेनाचार्य ने तो इसका 1/3 ही पार्ट लिखा है और उनके शिष्य ने उनके यानी जब वो नहीं रहे स्वर्गवास हो गया उसके पश्चात उनके शिष्य जो है उन्होंने इसकी रचना पूर्ण की थी। उसमें तो लिखा है 20,000 श्लोक प्रमाण तो इनकी रचना है वीर सेनाचार्य के, और 40,000 श्लोक प्रमाण आगे उनका मेरे ख्याल से जिनसेन नाम था, हम पढ़ेंगे उसको। ये जो कार्य हुआ है अत्यंत महान कार्य, और जो जिन पंडितों ने फुलचंद जी शास्त्री, कैलाश चंद जी शास्त्री, हीरालाल जैन, एन उपाध्याय आदि जो लोग हैं, अपने आयु के 20-25 साल इसके पीछे उन्होंने बिताए हैं। पहले तो ये तो रचनाएं कहीं उपलब्ध नहीं थी, बस मूल विद्री में, मूल प्राकृत में थी। धवला में हमने देखा था ना, वो जो लिपिकार थे कभी कभी बहुत सारे साल बीत जाते थे, वो ग्रंथ पुराने होते थे तो उनकी प्रतिलिपि करके रखते थे। तो ये प्रतिलिपि करते हुए उसके पत्नी ने बताया कि ये ऐसे ही रह जाएगा, तो चोरी छिपे दूसरी और एक प्रति बनाई थी, और फिर वो प्रति आरा के भंडार में रखी थी। वो प्रति लेने के लिए भी अन्य लोग तैयार नहीं थे कि ऐसी इस पद्धति से जो तैयार की है वो हम नहीं रखेंगे करके। परंतु बाद में ये जब बने हैं, उस समय तो मिड़बुद्री वालों ने भी अपनी रचना ये मिलान करने के लिए इनको उपलब्ध करा के दी थी। देखो ये पूरा ही नियरली 120 पेजेस की जो प्रस्तावना है, और उसके पहले भी किस विधि से क्या क्या इनको प्रॉब्लम आई थी, जिस जमाने में ये बना था 1940 तब ये युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर, कागज भी नहीं अवेलेबल था, और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए इसकी छपाई, इसकी रचना, इसकी जो कुछ है वो सब की है उन लोगों ने। तो ये जो संक्षिप्त इतिहास है, संपादक द्वारा जो कोई बातें वहाँ लिखी है और संपादकीय वक्तव्य जो है वो आप पढ़ लेना। अभी हम प्रस्तावना में कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान हम लेंगे, इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, क्या क्या नाम है। देखो एक प्रस्तावना पर नहीं, ये अभी जो संपादकीय है ना, उसमें से यह 12वां पेज जो है टाइप जो लिखा है, यानी इसमें तो तीन ग्रंथ के चले गए संपादकीय के, क्या प्रस्तावना के पहले जो है 12 पृष्ठ है शुरू में, तो यहाँ कषाय पाहुड़, चूर्णी सूत्र और जय धवला, ये तीन ग्रंथ इसमें चलेंगे, और टीका के बीच बीच में उद्धृत वाक्य भी आ जाते हैं। अतः मिला क्या आपको संपादकीय का? प्रस्तावना बाद में है, संपादकीय वक्तव्य की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि किस विधि से कौन सा टाइप लिया है, क्या है उसकी हम बात यहाँ देख के आगे बढ़ेंगे। यानी उन्होंने किस पद्धति से अनुवाद में कौन कौन सी विशेषताएं ली, वो सब उन्होंने लिया था। ये आप बिल्कुल पढ़ लेना सब, ऐसा नहीं कि चलो अभी हो गया कि मूल से पठनीय, परंतु इतने 120 पेजेस तो पूरे के पूरे यहाँ केवल वाचना ही करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की बात है ही नहीं है। फिर भी बीच बीच में जिन बिंदुओं को जानना जरूरी है उसको हम देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखो इस संस्करण में मिला सबको टाइप नाम का जो हेडिंग है उसमें, उसके चूर्ण कषाय पाहुड़, उसके चूर्णी सूत्र, यानी कषाय पाहुड़ ओरिजिनल ग्रंथ, उसके ऊपर जो चूर्णी का अर्थ क्या है वो सब आएगी बात, उसको चूर्णी सूत्र ही कहते हैं, ये तो यति वृषभाचार्य ने लिखा हुआ है, और जय धवला। इस प्रकार तीन ग्रंथ चलते हैं, तथा टीका में बीच बीच में उद्धृत वाक्य भी आ जाते हैं, यानी टीका में उन्होंने कहीं से कोटेड, जिसको कोटेशंस देते हैं, वो भी वाक्य आते हैं। अतः हमने इन सब के लिए विभिन्न टाइपों का उपयोग किया है। कषाय पाहुड़ की गाथाएं कालावन्निक में, अभी वो जो प्रिंटिंग के उनके जो आपको ज्यादा पता होगा, चूर्णी सूत्र ग्रेट नंबर 1 में, जय धवला ग्रेट नंबर 2 में, और उद्धृत वाक्य ग्रेट नंबर 4 में दिए हैं। ये अलग अलग टाइप के नाम बताए उन्होंने। मूड विद्री के प्रति में गाथा सूत्र, चूर्णी सूत्र और उच्चारणा के पहले, ये उच्चारणा जैसे चूर्णी सूत्र है ना, वैसे उच्चारणा भी एक टाइप है उसका, जैसे हम गाथा देखते हैं, कलश देखते हैं, ये सूत्र होते हैं, वार्तिक होते हैं, वैसे उच्चारणा नाम की भी एक पद्धति चली बाद में। तो उच्चारणा के पहले इस प्रकार फूल का चिन्ह है, यानी ओरिजिनल जो प्रति है मूडबिद्री में, उसमें अलग अलग जो उसके पहले फूल का चिन्ह अलग बता दिया। कसाय पाहुड़ में कुल गाथाएं 233 और विषय संबंधी 180 गाथाएं हैं। हमने गाथा के अंत में 233 के अनुसार चालू नंबर रखा है, तथा जो गाथा 180 वाली है उनका क्रमांक नंबर गाथा के प्रारंभ में दिया है। हिंदी अनुवाद में भी कषाय पाहुड़ की गाथाओं और चूर्णी सूत्रों का अनुवाद ग्रेट नंबर 2 में और जय धवला टीका तथा उद्धृत वाक्यों का अनुवाद ग्रेट नंबर 4 में दे दिया है, तथा उद्धृत वाक्यों को और उसके अनुवाद को दोनों ओर से इन्वर्टेड कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमा में उसको डाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये संशोधन संबंधी जो कोई उन्होंने बातें उसमें सुधार किया है उसकी बात भी उन्होंने व्यवस्थित डिटेल में दी है, क्योंकि मूल ग्रंथ से कहीं भी ऐसा नहीं कि किसी ने अपने मन से कोई बात डाली हो। यहाँ तो ऐसी बात है कि मूल ग्रंथ में जहाँ छूटा था, बाद में जो अन्य जगह प्रतियां उपलब्ध हुई उनमें वो मैटर भर दिया गया था, और उसका बराबर यानी जिसको कहते ना कि वो ठीक नहीं प्रतीत होता था, तो बाद में जब मूडबिद्री वाली प्रति उनके हाथ में आ गई तो पता चला कि हम मूल प्रति में वो मैटर छूटा हुआ है और किसी ने बाद में उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है। तो वो भी बातें उन्होंने वहां पर नोट कर दिया। अब यहाँ प्रस्तावना में आते हैं। प्राक कथन हम जिस ग्रंथ का परिचय यहाँ करा रहे हैं उसका भगवान महावीर की द्वादशांग वाणी से साक्षात संबंध है। मिला? अभी जो संपादकीय हो गए ना, तो प्रस्तावना का पहला पेज देखो, ये ऐसे प्रस्तावना मिल गया। हाँ, उसके बाद हाँ प्राक कथन का पूर्व का कथन, जो कुछ प्रस्तावना में शुरू में जो बता रहे हैं। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के प्रधान गणधर श्री गौतम स्वामी ने उनकी दिव्य ध्वनि को अवधारण करके जानकर द्वादशांग श्रुति की रचना की थी। उसके 12वें अंग का नाम दृष्टिवाद था। यह अंग बहुत विस्तृत था, उसके 5 भेद थे। हमने देखा ना 11 अंगों को मिलकर भी और अकेला दृष्टिवाद अंग भी 108 करोड़ कुछ होते हैं उसके, और बाकी सब ये 4 में कुछ आते हैं आसपास उसके। उसके 5 भेद थे, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका। इनमें से पूर्व के भी 14 भेद थे। ये 14 पूर्व इतने विस्तृत और महत्वपूर्ण थे, इनके द्वारा संपूर्ण दृष्टिवाद अंग का उल्लेख किया जाता है। हम हमेशा देखते हैं ना 11 अंग और 14 पूर्व, तो ये पूर्व में वो मैक्सिमम मैटर उसमें आ जाता है, इसलिए 14 पूर्व कहो या 12वां अंग कहो एक ही बात है। इसलिए क्या पद्धति कथन है, 11 अंग और 14वां पूर्व, और 11 अंग 14 पूर्व से संपूर्ण द्वादशांग का ग्रहण किया जाता है, यानी उसको बताया जाता है। द्वादशांग के पारगामी यानी उसको पूरी तरह से जानने वाले श्रुतकेवली कहे जाते थे। जैन परंपरा में ज्ञानियों में 2 ही पद सबसे महान गिने जाते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानियों में केवल ज्ञानी का और परोक्ष ज्ञानियों में श्रुतकेवली का। जैसे केवल ज्ञानी समस्त चराचर जगत को प्रत्यक्ष जानते और देखते हैं, वैसे ही श्रुतकेवली शास्त्र में वर्णित प्रत्येक विषय को स्पष्ट जानते हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 3 केवल ज्ञानी हुए, एक तो उनके गणधर, गौतम गणधर, फिर सुधर्माचार्य और जम्बुस्वामी, और केवल ज्ञानियों के पश्चात पांच श्रुत केवली हुए, यानी संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता, जिनमें से अंतिम श्रुत केवली भद्रभाहु स्वामी थे। भगवान महावीर के तीर्थ में होने वाले आरातीय पुरुषों में भद्रबाहु एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराएं अपना धर्मगुरु मानती है। अब उसके आगे जो इतिहास की बातें बहुत सारी है वो आती है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। चार नंबर पर जो तीसरा पैराग्राफ है, कषाय प्रावृत के इस प्रस्तुत संस्करण में तीन ग्रंथ एक साथ चलते हैं, जो हमने पहले देखा था। कषाय प्रावृत मूल, उसकी चूर्णी वृत्ति और उनकी विस्तृत टीका जयधवला। प्रस्तुत प्रस्तावना के भी तीन मूल विभाग है, प्रस्तावना भी तीन भागों में बटी है, एक ग्रंथ परिचय, दूसरा ग्रंथकार परिचय और तीसरा विषय परिचय। प्रथम विभाग में उक्त तीनों ग्रंथों का परिचय कराया गया है, दूसरे विभाग में उनके रचयिताओं का परिचय कराकर उनके समय का विचार किया। समय यानी वो उनका कौन सा काल होगा, वो तो उनके ग्रंथों के आधार से उस पर वहाँ पर होता है, या त्रिलोक पन्नति में भी अनेक बातें जो लिखी है, कितने राजा, उनका कौन कौन सा काल था, वो ग्रंथ के समान ऐसे लिखते ना, अभी इस राजा का राज्य चल रहा है और हमने इसकी पूर्ति की, तो उसके अनुसार उनका समय निश्चित किया जाता है, और उसके लिए इतिहास के या जो कोई उस पर रिसर्च करने वालों के कोटेशंस भी दिए जाते हैं। हम उसके डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, परंतु ये सब यहाँ पर लिखा भी है और हमें पढ़ना भी है। तथा तीसरे विभाग में उनमें चर्चित विषय का परिचय कराया जाता है। अब ये ग्रंथ परिचय में हम आते हैं। देखो ये नाम जहां लिखा है ना, प्रस्तुत ग्रंथ का नाम कषाय पाहुड़ है, जिसका संस्कृत रूप कषाय प्रावृत होता है। देखो आपने शायद यहाँ बाहर तो नहीं लिखा है, हाँ ये पहले पेज पर जो हमने नाम देखा था ना पुस्तक का नाम, जहाँ लिखा है देखो, श्री वीरसेनाचार्य विरचिता जयधवला टीका, उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रथमो अधिकार पेज 272। ये पेज 2 जो नाम है तो उसका क्या अर्थ है, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। राग द्वेष, देखो प्रस्तुत ग्रंथ का नाम कषाय पाहुड़ है, जिसका संस्कृत रूप कषाय प्रावृत होता है। पांच नंबर प्रस्तावना का जो है वहां हम पर पढ़ रहे हैं। यह नाम इस ग्रंथ की प्रथम गाथा में स्वयं ग्रंथकार ने ही दिया है, तथा चूर्णी सूत्रकार ने भी अपने चूर्णी सूत्रों में इस नाम का उल्लेख किया है, जैसे कषाय पाहुड़े सम्मतेति अणुवगत दारे। जयधवलाकार ने भी अपनी जयधवला टीका के प्रारंभ में कषाय पाहुड़ का नाम उल्लेख करते हुए उसके रचयिता को नमस्कार किया है। अभी जो अभी हमने देखी ना, हमने अभी आठ गाथाएं मंगलाचरण के रूप में, उसमें सबका नाम आया है, ग्रंथों के नाम आए हैं, वो सब आर्यमंशो वगैरह सबका नाम आया है, नागहस्ती का वो शायद हमने गौर नहीं किया, परंतु अभी हम पढ़ेंगे उसको। श्रुतावतार के कर्ता, ये श्रुतावतार भी एक ग्रंथ है बाद में जो इंद्रनंदी ने लिखा था, आचार्य इंद्रनंदी ने भी इस ग्रंथ का यही नाम दिया है, अतः प्रस्तुत ग्रंथ का कषाय पाहुड़ या कषाय प्रावृत नाम निर्विवाद है। अब इसी ग्रंथ का दूसरा नाम है, देखो दूसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम, क्योंकि नाम की बाबत हम देखेंगे। इस ग्रंथ का एक दूसरा नाम भी पाया जाता है, और वह नाम भी स्वयं चूर्णी सूत्रकार ने अपने चूर्णी सूत्र में दिया है, यथा तस्स पाहुड़स्स दुवे नाम धेज्जानी, यानी उस पाहुड़ के दो नाम हैं। तम जहा वह इस प्रकार, पेज्ज दोष पाहुड़े तिवि कसाय पाहुड़े तिवि, पेज्ज दोष पाहुड़ और कषाय पाहुड़, अर्थात उस प्रावृत के दो नाम हैं, पेज्ज दोष प्रावृत और कषाय प्रावृत। इस चूर्णी सूत्र की उत्थानिका में जयधवलाकार लिखते हैं, पेज्जम्ति पाहुड़म्मी दुहवदि कसायाण पाहुड़म नाम। अभी इसके आगे यहाँ जो आगे अभी पेज नीचे से उस पैराग्राफ में नीचे से छठी लाइन, उसका सीधा अर्थ इतना ही लिखा है ना, वहां से ज्ञान प्रवाद नामक पांचवे पूर्व की, ये पूर्व किस में देखे थे हमने, चौदह पूर्व बारहवें अंग में देखे थे, उसके जो पांचवा पूर्व है उसका नाम है ज्ञान प्रवाद, उसके दसवीं वस्तु में तीसरा पेज प्रावृत है, उससे कषाय प्रावृत की उत्पत्ति हुई। ये कषाय प्रावृत का ओरिजिन सीधा गणधर की रचना से है, इसलिए उसके कहां से ये रचना हुई उसको बताया। ज्ञान प्रवाद नाम का पांचवा पूर्व उसकी दसवीं वस्तु में से तीसरा पेज प्रावृत है। तथापि जब चूर्णी सूत्रकार स्पष्ट लिखते हैं कि उस प्रावृत के दो नाम हैं, तब वे दोनों नाम निराधार तो नहीं हो सकते। अब हम आगे हम देखेंगे इसका नाम की। नीचे के दूसरी लाइन, नीचे से दूसरी लाइन, नाम पदों का वर्णन करते हुए, आपको शायद धवला की बात याद होगी जो नाम रखते ना, हाँ, तो उसमें भी कभी कभी वो क्या कार्य करता है उसके अकॉर्डिंगली नाम रखते हैं, जैसे किसी को गायक कहना, नर्तक कहना, हमने कहते ड्राइवर कहना या अन्य कोई, और कोई होता है उसके जो गुण है उसके अकॉर्डिंगली उसको गौण्य पद आदि, वो नाम के अलग अलग प्रकार है। तो यहाँ कहते हैं, नाम पदों का वर्णन करते हुए जयधवलाकार ने इस ग्रंथ के दोनों नामों का अंतर्भाव गौण्य नाम पद में किया है। एक गौण्य नाम पद किसको कहना, गुण से गौण्य शब्द हुआ ना, जो नाम गुण की मुख्यता से व्यवहार में आता है उसे गौण्य नाम पद कहते हैं। इस ग्रंथ में हाँ गुण की मुख्यता से हम कहते ये बहुत सियाना है, ये होता है ऐसा उसके, हाँ इस ग्रंथ में पेज दोष और कषायों का विस्तार से वर्णन है, इसलिए इसे पेज दोष प्रावृत या कषाय प्रावृत कहते हैं, अतः ये दोनों नाम सार्थक है। अब यहाँ पेज का अर्थ लिखा है, पेज राग को कहते हैं और दोष से आशय द्वेष का है, राग और द्वेष दोनों कषाय के ही प्रकार है। ये बाजू में जो बोल्ड है ना वो उसका हेडिंग है। कषाय के बिना राग और द्वेष रह नहीं सकते, कषाय शब्द से राग और द्वेष दोनों का ग्रहण हो जाता है, किंतु राग से अकेले राग का और द्वेष से अकेले द्वेष का ही ग्रहण होता है। क्या कहना, अगर राग कहेंगे तो राग ही आएगा उसमें और द्वेष में तो द्वेष इंक्लूड है, परंतु दोनों को अगर कहना है तो कषाय एक शब्द काफी है, उसमें तो दोनों आते हैं। देखो यहाँ आगे लिखा है, नीचे से उस पैराग्राफ में नीचे से छठी लाइन, एक कषाय शब्द से मिला पेज्य और दोष दोनों का ग्रहण किया जाता है, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से पेज्य भी कषाय है और राग भी कषाय है। अतः यह नाम नयन निष्पन्न है। सारांश यह कि इस ग्रंथ में राग और द्वेष का विस्तृत वर्णन किया गया है और ये दोनों ही कषाय रूप है। ये ग्रंथ को कषाय पाहुड़ क्यों कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना, तो कषायों का इसमें विस्तृत वर्णन है, इसलिए इसका नाम कषाय प्रावृत्त। और उसी का दूसरा नाम है पेज दोष पाहुड़, यानी राग द्वेष पाहुड़। अब हम आगे देखो, हम सूत्र का एक लक्षण दिया है नीचे से आगे के पैराग्राफ में, यानी बीच वाले नीचे के दूसरे पैराग्राफ में नीचे से छठी लाइन। सूत्र किसे कहना, शास्त्रकारों ने सूत्र का लक्षण करते हुए लिखा है जिसमें अल्प अक्षर हो, जो असंदिग्ध हो, जिसमें प्रतिपाद्य विषय का सार भर दिया गया हो, जिसका विषय गूढ़ हो, जो निर्दोष संयुक्तिक और तथ्यभूत हो, उसे सूत्र कहते हैं। ये पूरे सूत्र की परिभाषा आ गई इसमें, यानी मिनिमम पॉसिबल अक्षरों में, शब्दों में भी नहीं, अक्षरों में मैक्सिमम पॉसिबल उसका अर्थ उसमें भर दिया जाए। ये तो हमें तो किसी एक विषय पर घंटा दो घंटा बोलना तो आसान है, परंतु वो सब माल 10 अक्षरों में या 2-4 शब्दों में बता देना बहुत मुश्किल बात है। तो इसको ये सूत्रकार के सूत्र कहते हैं। और संदिग्ध है ना, उसका अर्थ स्पष्ट हो, हम कहें वो संदिग्ध बोलता है ना, कुछ ऐसे गोलमाल बोलता है। असंदिग्ध है ना, स्पष्ट हो। हाँ, अब यहाँ हम आ गए। अब हम 7 नंबर पृष्ठ पर आते हैं, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। हम पहले लिख आए हैं कि मिला, उसमें हेडिंग दिया है कषाय प्रावृत और षटखंडागम। हम पहले लिखा है कि षटखंडागम की रचना दूसरे पूर्व से की गई है और कषाय प्रावृत की रचना पंचम पूर्व से की गई। अभी हमने देखा है ना, उसका नाम भी पढ़ा था, ज्ञान प्रवाद पूर्व। षटखंडागम में विविध अनुयोग द्वारों से 8 कर्मों के बंध, बंधक आदि का विस्तार से वर्णन किया है। बंध, बंधक, बंधनीय वगैरह हमने उसमें देखा था विस्तार। और कषाय प्रावृत में केवल मोहनीय कर्म का ही मुख्यता से वर्णन है। ये दोनों का डिफरेंस बताते। षटखंडागम की रचना प्रायः गद्य सूत्रों में की गई है, जबकि कषाय प्रावृत गाथा सूत्रों में ही रचा गया है। तो सूत्र, परंतु गाथा के रूप में सूत्र है। दोनों के सूत्रों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर दोनों की परंपरा मतैक्य या मतभेद, यानी कहीं पर एक ही दोनों जगह है और कहीं पर दो अलग अलग उपदेश भी पाए जाते हैं ना, आदि बातों पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है। यद्यपि ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया, तथापि धवला और जय धवला के कुछ उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ग्रंथों में किन्हीं मंतव्यों के संबंध में मतभेद है, यानी किसी किसी कथन पर वो अन्य अन्य उसमें परंपरा पाई जाती है। वैसे तो दोनों ही टीकाकार एक ही है, धवला की और जय धवला। उदाहरण के लिए चूर्णी सूत्र में दोष का उत्कृष्ट और जघन्य काल अंतर्मूर्त बतलाया है। उस पर जय धवला में शंका की गई है कि जीव स्थान में एक समय काल बतलाया है, सो उसका और इसका विरोध क्यों नहीं है। तो उसका समाधान करते हुए जय धवलाकार ने दोनों के विरोध को स्वीकार किया है और कहा है कि वह उपदेश अन्य आचार्य का है। अभी और भी उसमें कहां कहां मतभेद है उसकी बात है, हम उसको अभी गौण करते हुए आगे चले जाएंगे। और भी यहां आगे बताया कि श्वेतांबर साहित्य में कर्म प्रकृति नाम का जो उनका ग्रंथ है कर्म के संबंध में, और उसमें भी कुछ कुछ गाथा या अपने गाथा उनसे मिलती है वगैरह वगैरह, वो बात उन्होंने की है। ऐसा भी लिखा है कि जब श्वेतांबर मत अलग हुआ था तो भद्रबाहु को उन्होंने बुलाया था, वो पटना या कहाँ पर उनका जो सम्मेलन हुआ था, परंतु वे तो गए नहीं थे। उनके पास आकर कोई दूसरा उनका शिष्य पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा, परंतु उनको दृष्टिवाद के अंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था। श्वेतांबरों को 11 अंग उनके पास थे, और वो इसमें आती है बात, जब आएगी प्रस्तावना में तो हम उसको भी देख के चलेंगे आगे। अब हम आगे जाते हैं। नौ पेज पर पहली लाइन प्रस्तावना का नौ पृष्ठ मिला, आगे आगे नौ नंबर, वो अभी आप हाँ ऊपर से ही जहाँ हेडिंग दिया कषाय प्रावृत्त की टीकाएं, इंद्रनंदी ने अपने श्रुतावतार में लिखा है, ये तो इंद्रनंदी बहुत बाद में हुए, श्रुतावतार नाम के ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, गुणधर आचार्य ने कषाय प्रावृत्त की रचना करके नागहस्ती और आर्यमंशु आचार्य को उनका व्याख्यान किया। उनके पास में कषाय प्रावृत्त को पढ़कर यति ऋषभ आचार्य ने उस पर 6000 प्रमाण चूर्णी सूत्रों की रचना की। यति ऋषभ आचार्य से उन चूर्णी सूत्रों का अध्ययन करके उच्चारणाचार्य ने उन पर 12000 प्रमाण उच्चारणा सूत्रों की रचना की। उनके सूत्रों को उच्चारणा सूत्र ही कहने में आता है। इस प्रकार गुणधराचार्य के गाथा सूत्र, यति ऋषभ आचार्य के चूर्णी सूत्र, गाथा सूत्र नहीं सूत्रात्मक गाथा है वे, तो ये कषाय पाहुड़, यति ऋषभ आचार्य ने लिखे हुए चूर्णी सूत्र, उच्चारणाचार्य के उच्चारणा सूत्रों के द्वारा कषाय प्रावृत्त उपसंहृत किया गया है। उपसंहृत किया है यानी उसका उपसंहार करने में आया है, कषाय प्रावृत्त को विस्तार से बताया। हाँ टीका के यहाँ लिखा है ना हेडिंग, उसकी टीका है, मूल कषाय प्रावृत्त, उस पर चूर्णी सूत्र यति ऋषभाचार्य ने लिखे हुए, उच्चारणाचार्यों ने उस पर उच्चारणा सूत्र लिखे, उसके ही सूत्र बने बाद में, उसके बाद जयधवला बनी और उसके बाद ये श्रुतावतार आया। षटखंडागम और कषाय प्रावृत्त ये दोनों ही सिद्धांत ग्रंथ, ये सिद्धांत किसको कहना उसकी भी बात आती है आगे। गुरु परिपाटी से कुंडकुंद नगर में श्री पद्मनंदी मुनि को प्राप्त हुए, कुंदकुंदाचार्य को, उन्होंने षटखंडों में से आदि के तीन खंडों पर 12000 प्रमाण परिक्रम नाम का ग्रंथ रचा। हमें तो लगता है बस पांच परमागम ही लिखे उन्होंने। वो अलग है, वो तो उसका वो दृष्टिवाद का है भेद है, इसका नाम परिक्रम है, और जो गणित होता है उसको भी परिक्रम कहने में आता है, तो गणित संबंधी भी और एक कोई परिक्रम नाम का ग्रंथ था, वो और तीसरा है। कुंदकुंदाचार्य ने तो तीन खंडों पर ये टीका लिखी है, परिक्रम जिसको धवला में बारंबार उल्लेख है वो परिक्रम नाम का कोई गणित का शास्त्र है, और ऐसे भी ऑर्डिनरी गणित को ही परिक्रम कहने में आता है, परिक्रम संबंधी ये जो अर्थ संदृष्टि में वगैरह दिखा है ना, तो वहां उसको परिक्रम कहने में आता है। देखो उसके बाद कितना ही काल बीतने पर श्याम कुंड आचार्य ने दोनों आगमों को पूरी तरह से जानकर, कौन से, षटखंडागम और कषाय प्रावृत्त, महाबंध नाम के छठे खंड के सिवा शेष दोनों खंडों पर, ग्रंथों पर, सॉरी 12000 प्रमाण प्राकृत संस्कृत और कर्नाटक भाषा से मिश्रित पद्धति रूप ग्रंथ की रचना की। उसके बाद कितना ही काल बीतने पर तुम्बलूर ग्राम में तुम्बलूर नाम के आचार्य हुए, उन्होंने भी षष्ठ खंड के सिवा शेष पांच खंडों पर तथा कषाय प्रावृत्त पर कर्नाटक भाषा में 84000 प्रमाण चूड़ामणि नाम की महती व्याख्या रची, यानी बहुत बड़ी। इस साउथ में तो बहुत सारे ग्रंथ है, इसे भी कितने भंडारों में अभी भी होंगे। उसके बाद स्वामी समंतभद्र हुए, ये नाम याद है किसका है? हाँ, उनका कोई ग्रंथ पढ़ा आपने? रत्नग्रंथ शौकाचार्य। हाँ, उन्होंने भी षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर अति सुंदर संस्कृत भाषा में 48,000 प्रमाण टीका की रचना की। जब वे दूसरे सिद्धांत ग्रंथ पर व्याख्यान लिखने को तैयार हुए तो उनके एक सधर्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। साधर्मी। अभी और भी उसमें बहुत सारी टीकाएं लिखी है जो देखो देखो हम पढ़ ही लेते हैं, यानी यहाँ पर आना है ना हमको वीरसेन तक। इस प्रकार दोनों सिद्धांत ग्रंथों का व्याख्यान क्रम गुरु परंपरा से आता हुआ शुभनंदी और रविनंदी मुनि को प्राप्त हुआ। भीमरथी और कृष्णमेघ नदियों के बीच में के प्रदेश में सुंदर उत्कलिका ग्राम के समीप में स्थित प्रसिद्ध मगनवल्ली ग्राम में उन दोनों मुनियों के पास समस्त सिद्धांत का अध्ययन करके वप्पदेव ने आदि सिद्धांत के 5 खंडों पर व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम की टीका लिखी और कषाय प्रावृत पर भी टीका लिखी। इस टीका का प्रमाण 60,000 था और यह प्राकृत भाषा में थी तथा छठे खंड पर 5,008 श्लोक प्रमाण व्याख्या लिखी। उसके बाद कितना ही काल बीतने पर चित्रकूटपुर के निवासी एलाचार्य सिद्धांतों के ज्ञाता हुए। उनके पास में सकल सिद्धांत का अध्ययन करके श्री वीरसेन स्वामी ने यहाँ पर नाम आया। वाट ग्राम में आनतेंदु के द्वारा बनवाए हुए चैत्यालय में ठहर कर व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम की टीका को पाकर षटखंडागम पर 72,000 प्रमाण धौला टीका की रचना की तथा कषाय प्रावृत की 4 विभक्तियों पर 20,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। उसके बाद वीरसेन स्वामी का स्वर्गवास हो गया तथा उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने, ये उनका जो जय धौला का कार्य है ना, इन्होंने तो 20,000 श्लोक प्रमाण लिखा, शेष कषाय प्रावृत पर 40,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। इस प्रकार कषाय प्रावृत की टीका जय धौला का प्रमाण 60,000 हुआ। ये दोनों टीकाएं प्राकृत और संस्कृत से मिश्रित भाषा में रची गई है। श्रुतावतार के इस वर्णन से प्रकट होता है कषाय प्रावृत पर सबसे पहले आचार्य यतिवृषभ ने चूर्णी सूत्रों की रचना की। उसके बाद उच्चारणाचार्य ने उन पर उच्चारणावृत्ति की रचना की। ये चूर्णी सूत्र और उच्चारणावृत्ति मूल कषाय प्रावृत के इतने अविभाज्य अंग बन गए कि इन तीनों की ही संज्ञा कषाय प्रावृत पड़ गई। तीनों को मिलकर कषाय प्रावृत कहने लगे और कषाय प्रावृत का उपसंहार इन तीनों में ही हुआ कहा जाने लगा। उसके बाद श्याम कुंडाचार्य ने पद्धति रूप टीका की रचना की, उसको पद्धति कहते हैं। तुम्बलूर आचार्य ने चूड़ामणि नाम की व्याख्या रची। बप्पदेव ने व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक टीका की रचना की। आचार्य वीनसेन तथा उनके शिष्य आचार्य जिनसेन ने जय धवला टीका की रचना की। आचार्य कुंदकुंद और स्वामी समंतभद्र ने कषाय प्रावृत पर कोई टीका नहीं रची, वो षटखंडागम पर उनकी रचनाएं हैं। आचार्य यतिवृषभ के चूर्णी सूत्र तो प्रस्तुत ग्रंथ में ही मौजूद है। जय धवलाकार ने उन्हें लेकर ही अपनी जय धवला टीका का निर्माण किया है। मूल गाथाएं और चूर्णी सूत्रों की टीका का नाम ही जय धवला है। ये जय धवला क्या है? तो मूल कषाय प्रावृत की गाथाएं प्लस चूर्णी सूत्र, इन दोनों को मिलकर उसकी जो टीका है उसका नाम है जय धवला। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये उच्चारण किसको कहना वगैरह वो सब आगे उन्होंने लिखा है। ये अलग अलग जो आचार्य हुए, श्याम कुंडाचार्य, तुम्बलाचार्य, उनके जो रचना है उसके संबंध में भी यहाँ बातें लिखी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, 18, 11, हाँ उस पर क्या है? उत्तीस सूत्र किसको कहने वो बताया है? देखो देखो 11 पृष्ठ पर, लास्ट लाइन, जिसकी शब्द रचना संक्षिप्त हो और जिसमें सूत्र के अशेष अर्थों का संग्रह किया गया हो, अशेष ने सभी को कुछ छोड़े बिना संपूर्ण अर्थ का संग्रह किया गया हो, ऐसे विवरण को वृत्ति सूत्र कहते हैं। वृत्ति सूत्रों के विवरण को टीका कहते हैं और वृत्ति सूत्रों के विषम पदों का जिसमें भंजन ने विश्लेषण किया गया हो उसको पंजिका कहते हैं। हाँ, भंजन ने उसका विश्लेषण। हाँ, वृत्ति सूत्रों के विषम पद, विषम पद है ने उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा हो गए वो, और सूत्र तथा उसकी वृत्ति के विवरण को पद्धति कहते हैं। पद्धति के इस लक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम कुंडाचार्य की पद्धति रूप टीका गाथा सूत्र और चूर्णी सूत्रों पर रची गई है। अब हम आगे आते हैं। देखो 15 पृष्ठ पर, ये जो तीसरे लाइन से पैराग्राफ शुरू होता है ना, उस पैराग्राफ की चौथी लाइन, अस्तु जो कुछ हो पर इतना निश्चित है कि चूर्णी सूत्रों की रचना शैली अति संक्षिप्त और अर्थपूर्ण है और उनका रहस्य जयधवलाकार श्री वीरसेन स्वामी जैसे बहुश्रुत विद्वान ही हृदयंगम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो शॉर्ट में होते हैं सूत्र और उसमें बहुत कुछ अर्थ गंभीर उसमें भरा हुआ है। उसके लिए उदाहरण भी उन्होंने दिए, कौन कौन से कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे कैसे उसमें से अर्थ निकालना है। अब यहाँ 17 पृष्ठ पर, ये जो ऊपर गाथा के नीचे जो लिखा है, जयधवलाकार के द्वारा किए गए व्याख्यान के अनुसार, अभी उसके कौन कौन से अधिकार है उसको बताते हैं। पेज्य दोष विभक्ति, स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति, वो ग दो बार आया, अनुभाग विभक्ति, बंधक, संक्रम, वेदक, उपयोग, चतुस्था, व्यंजन, अभी सम्यक्त्व से संबंधित ऐसे जो है 10वें नंबर पर, दर्शन मोह की उपशामना, वो दर्शन मोह की शब्द ले लेना, फिर दर्शन मोह की क्षपना, उसके बाद देश विरति संयम, फिर 14वां चारित्र मोहनी की उपशामना और 15वें नंबर पर चारित्र मोह की क्षपना, ये 15 अधिकार कषाय पाहुड़ के रचयिता को इष्ट है। किंतु चूर्णी सूत्रकार ने इन गाथाओं पर जो चूर्णी सूत्र बनाए हैं उनमें वे अधिकारों का निर्देश नंबर डालकर इस प्रकार करते हैं, वे नंबर उन्होंने अलग अलग डाले हैं, उसके वो 15वें में अद्धा परिमाण निर्देश वगैरह वगैरह डाले हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। 24 पृष्ठ। जहाँ जयधोला लिखा है वहाँ हम देखते हैं। इस संस्करण में मिला कषाय पाहुड़ और उसके चूर्णी सूत्रों के साथ जो विस्तृत टीका दी गई है उसका नाम जयधोला है। यों तो टीकाकार ने इस टीका की प्रथम मंगल गाथा के आदि में ही जय ही धवलंग तेये पद देकर ये नाम उसका हेडिंग है, इसके जयधवला नाम की सूचना दे दी है, परंतु अंत में तो उसके नाम का स्पष्ट उल्लेख कर दिया है यथा एत्थ समप्पई धवलिय तिहुवन भवना प्रसिद्ध माहप्पा पाहुड़ सुत्तान मिमा जय धवला सन्निया टीका, यानी जय धवला नाम की टीका है। अर्थात तीनों लोकों के भवनों को धवलित करने वाली और प्रसिद्ध महात्म्य वाली कषाय पाहुड़ सूत्रों की यह जय धवला नाम की टीका यहाँ समाप्त होती है। यह नाम का कारण क्या है उसको अभी यहाँ बताते हैं। ऊपर के उल्लेखों से यह तो स्पष्ट हो जाता है इस टीका का नाम जय धवला है, किंतु यह जानने की आकांक्षा बनी रहती है इसको यह नाम क्यों दिया गया। टीकाकार ने स्वयं तो इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा, किंतु उनके उल्लेखों से कुछ कल्पना जरूर की जा सकती है। टीका की प्रारंभ में टीकाकार ने भगवान चंद्रप्रभ स्वामी की जय कामना करते हुए उनके धवल वर्ण शरीर का उल्लेख किया है। अभी हमने जो मंगलाचरण देखा था उसमें पहले चंद्रप्रभ भगवान को नमस्कार किया। आठवें तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभ स्वामी के शरीर का वर्ण धवल अर्थात श्वेत था यह प्रकट ही है। अतः इस पर से यह कल्पना की जा सकती है जिस वाटग्राम पूर्व में इस टीका की रचना हुई, कहीं पर उन्होंने आगे लिखा है वाटग्राम पूरे ने बड़ौदा हो सकता है करके, ये पुराना नाम है, उसके जिनालय में चंद्रप्रभ स्वामी की कोई श्वेत वर्ण मूर्ति रही होगी, उसी के सानिध्य में होने के कारण टीकाकार ने अपनी टीका में चंद्रप्रभ भगवान का स्तवन किया है और उसी पर से जयधवला नाम की सृष्टि की गई है। परंतु यह कल्पना करते समय हमें यह नहीं भुला देना चाहिए टीकाकार श्री वीरसेन स्वामी ने इससे पहले प्रथम सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम पर धवला नाम की टीका बनाई थी, उसके पश्चात इस जयधवला टीका का निर्माण हुआ। अतः इसका नाम का मूलाधार तो प्रथम टीका का धवला नाम है, उसी पर से इसका नाम जय धवला रखा गया है। दोनों में भेद डालने के धवला के पहले जय विशेषण लगा दिया है। फिर भी यथा मूल नाम धवला है अतः उस नाम की कुछ सार्थकता तो इसमें होनी ही चाहिए, संभवतः इसीलिए इस टीका के प्रारंभ में धवल शरीर श्री चंद्रप्रभ भगवान का स्तवन किया गया है। आगे भी लिखा है, देखो षटखंडागम के प्रथम भाग की प्रस्तावना में उसकी टीका धवला के नाम की सार्थकता बतलाते हुए लिखा है, वीरसेन स्वामी ने अपनी टीका का नाम धवला क्यों रखा यह कहीं बतलाया गया दृष्टिगोचर नहीं हुआ। धवल का शब्दार्थ शुक्ल के अतिरिक्त शुद्ध विशद स्पष्ट भी होता है, संभव है अपनी टीका के इसी प्रसाद गुण को व्यक्त करने के लिए उन्होंने यह नाम चुना हो। यह टीका कार्तिक मास के धवल पक्ष की त्रयोदशी को समाप्त हुई थी, अतएव संभव है इसी निमित्त से रचयिता को यह नाम उपयुक्त जान पड़ा हो वगैरह वगैरह। आगे के पैराग्राफ में एक वाक्य है चौथे लाइन में, यथार्थ में इन टीकाओं की उज्जवल ख्याति ने तीनों लोगों को धवलित कर दिया है, अतः इनका धवला नाम सार्थक है। अब हम आगे का जो हेडिंग है ना नीचे, जयधवला सिद्धांत ग्रंथ। धवला की प्रतियों के अंत में एक वाक्य पाया जाता है, एवं सिद्धांतारणवम पूर्तिम अगमत, अर्थात इस प्रकार सिद्धांत समुद्र पूर्ण हुआ। अब हम आगे देखते हैं नीचे के दो लाइन है, सिद्धांत क्यों कहना या किसको कहना, गाथा के नीचे जो अर्थ दिया है, अंत में सिद्धों का कथन किए जाने के कारण जो सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध है वह अनादि अनंत संतान वाला सिद्धांत हमारी चिरकाल तक रक्षा करे। अभी हमने जो धवला का वाचन पूरा हुआ ना, 24वां अनुयोग द्वार तो अल्प बहुत था, उसके पहले का 23 नंबर का कौन सा था? पश्चिम स्कंद। पश्चिम स्कंद में क्या बताया था उन्होंने, वो पूरा क्षपणा अंत में कैसी होती है और सिद्ध को सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। तो सिद्धों का जिसमें वर्णन आता है अंत में, उनको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। इस श्लोक आगे 26 पेज पर इस श्लोक से यह स्पष्ट है, चूंकि धवला और जयधवला टीका के अंत में सिद्धों का कथन किया गया है, इसलिए उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। उसके बिना कोई ग्रंथ सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, और संभवतः इसीलिए कषाय पाहुड़ के अंत में सिद्धों की चर्चा की गई है। बात यह है कि कषाय पाहुड़ का व्याख्यान समाप्त करके जयधवलाकार ने चूर्णी सूत्र में निरूपित पश्चिम स्कंद नाम के अधिकार का वर्णन किया है। घातिया कर्मों के क्षय हो जाने पर अघातिया कर्म स्वरूप जो कर्म स्कंद पीछे से रह जाता है, उसे पश्चिम स्कंद कहते हैं। चार घातिया निकल गए ना, स्कंद है ना, वो तो अभी परमाणुओं का समूह है। पश्चिम स्कंद किसको कहना? वो जो चार अघातिया रह जाते उसको, क्योंकि उसका सबसे पीछे क्षय हो जाता है, इसलिए उसका नाम पश्चिम स्कंद न्याय है। अब आगे उसके नीचे के पैराग्राफ में कुछ बताना चाहती हूँ मैं। नीचे के पैराग्राफ में पांचवी लाइन, इस पश्चिम स्कंद में मिला, नीचे के पैराग्राफ में पांचवी लाइन, अघाती कर्मों के क्षय के द्वारा सिद्ध पर्याय की प्राप्ति करने का कथन रहता है, और जिसके अंत में सिद्धों का वर्णन हो वही सिद्धांत है। ये सिद्धांत ग्रंथ के पर किसमें बात आई थी? परमार्थ वचनिका में आई थी क्या समय? हाँ, परमार्थ सिद्धांतों की बात आई है ना। हाँ, कर्णानियों के जो षटखंडागम है ना, उसको ये क्यों कहना, तो उसका ये यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। सिद्धांत क्यों कहना, किसको कहना, वो तो बात आई थी, क्यों कहना वो बात यहाँ पर आ गई। जिसके अंत में, हाँ, जिसके अंत में सिद्धों का वर्णन हो वही सिद्धांत है, इसीलिए धवला और जयधवला को सिद्धांत ग्रंथ भी कहते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए, प्रथम सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम का उद्भव तो महाकर्म प्रकृति प्रावृत से ही हुआ है, अतः उसके अंत में तो पश्चिम स्कंद अधिकार होना आवश्यक ही है, किंतु कषाय पाहुड़ का उद्गम महाकर्म प्रकृति प्रावृत से नहीं हुआ है, और इसलिए उसके अंत में जो पश्चिम स्कंद का वर्णन किया गया है वह इसलिए किया गया है कि उसके बिना उसकी सिद्धांत संज्ञा नहीं बन सकती थी, क्योंकि सिद्धांतों का वर्णन कषाय पाहुड़ में, सिद्धों का वर्णन कषाय पाहुड़ में नहीं है। कषाय पाहुड़ में तो मोहिनी की मुख्यता से बात है, फिर भी उसका वर्णन किए बिना वो सिद्धांत ग्रंथ नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर किया है। इस विवरण से पाठक यह जान सकेंगे इन ग्रंथों को सिद्धांत क्यों कहा जाता है। सिद्धांत शब्द पुल्लिंग है और धवला जयधवला नाम स्त्रीलिंग है। ये शब्द नए में आता है ना अभी, हाँ, धवला सिद्धांत नहीं कह सकते तो धवल सिद्धांत कहेंगे। स्त्रीलिंग शब्द के साथ पुल्लिंग शब्द की संगति ठीक नहीं बैठती नहीं, इसलिए धवला और जयधवला को धवल और जयधवल रूप देकर धवल सिद्धांत और जयधवल सिद्धांत नाम प्रचलित हो गया है। स्वामी जी के मुख में धवल ऐसा आता था और हम धवला कहते हैं, तो धवला टीका और धवल सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत नाम लगाना है तो उसको धवला के बदले धवल लिखना योग्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं 29 पेज पर। ये जो ऊपर गाथा है उसका अर्थ लिखा है, अनिपुण व्याख्याता के दोष से सुगम बात भी दुर्गम हो जाती है। क्या कहते हैं? व्याख्याता अगर वो अनिपुण हो, कुछ जानता नहीं हो, तो सादी सिंपल बात को भी डिफिकल्ट कर जाता है, दुर्गम हो जाती है। किंतु जयधवला में जो कुशल है उनको दुर्गम अर्थ का भी ज्ञान सुगम हो जाता है। यानी जयधवला में तो दुर्गम अर्थ को भी सुगम करके बताया। वास्तव में जयधवलाकार कुशल व्याख्याता थे और उन्होंने अपनी रुचिकर व्याख्यान शैली से दुर्गम पदार्थों को भी सुगम बना दिया है, जैसा कि आगे के लेख से स्पष्ट है। अब यहाँ जयधवला की जो व्याख्या शैली, वहाँ थोड़ा हम पढ़ते इसको। हम पहले लिख आए हैं कि जयधवला कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, किंतु कषाय पहुड़ और उसके चूर्णी सूत्रों का सुविशद व्याख्यान है, यानी अत्यंत सुविशद, स्पष्ट और विस्तार से। जबकि कषाय पहुड़ 233 गाथाओं में निबद्ध है और चूर्णी सूत्र 6000 श्लोक प्रमाण है, तब जयधवला 60000 श्लोक प्रमाण है, अर्थात चूर्णी सूत्रों से उनकी टीका का प्रमाण प्रायः 10 गुना है। इसका कारण उसकी रचना शैली की विशदता है, जिसका स्पष्ट आभास उनकी व्याख्यान शैली में मिलता है। अभी उनकी व्याख्यान शैली के लिए उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है, जो अभी आप पढ़ना। मैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स को ही बताऊंगी आपको। चौंतीस पृष्ठ पर आना। ये बीच में बड़ा पैराग्राफ है, वो पूरा पढ़ना, पर उसमें नीचे से पांचवी लाइन जो है ना, इसका सार उसमें लिखा है। प्रथम सिद्धांत ग्रंथ धवल, दूसरा सिद्धांत ग्रंथ जय धवल और महाबंध महाधवल कहा जाने लगा, ये किसके नाम है उसकी बात यहाँ उसमें आ गई है। फिर ये नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने कैसे उसमें से गमनसार बनाया, क्या क्या है, वो सब इसमें विस्तार से बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का दूसरा जो बिंदु है, ग्रंथकार का परिचय, उसमें थोड़ी बातें लेनी हमको। 36 पेज। देखो ये गाथाओं का अर्थ लिखा है। अभी हमने जो मंगलाचरण कहा था ना, आठ गाथाएं कही थी, उसमें छठे सातवें आठवें गाथा का यहाँ अर्थ देखते हैं। जिन्होंने इस आर्यावर्त में, आर्यावर्त है ना, अभी हम अपना देश है उसको आर्यावर्त कहते हैं, अनेक नयों से युक्त उज्जवल और अनंत पदार्थों से व्याप्त कषाय प्रावृत का गाथाओं द्वारा व्याख्यान किया, उन गुणधर भट्टारक को मैं वीरसेन आचार्य नमस्कार करता हूँ। ये जो आठ गाथाएं हैं वो मंगल रूप से जयधवला के शुरू में वीरसेन आचार्य ने लिखी है। उसका भी हमने जो ऊपर देखा है, गुणहर भड़ारयम यानी गुणधर भट्टारक। अब सातवीं गाथा में, जिन आर्य मंक्षु आचार्य ने गुणधर आचार्य के मुख से प्रकट हुई गाथाओं के समस्त अर्थ का उदाहरण किया, नागहस्ती आचार्य सहित वे आर्य मंक्षु आचार्य मुझे वर प्रदान करें। नागहस्ती और आर्य मंक्षु इन दोनों को यहाँ नमस्कार किया। फिर आठवें में कहते हैं, जो आर्य मंक्षु आचार्य के शिष्य है और नागहस्ती आचार्य के अंतेवासी है, वृत्ति सूत्र के कर्ता वे यति वृषभ मुझे वर प्रदान करें, उनको भी यहाँ नमस्कार किया। उक्त गाथाओं से स्पष्ट है, अब यहाँ किसके रचयिता कौन है वो बताया है शॉर्ट में। कषाय प्रावृत के रचयिता आचार्य गुणधर है, उन्होंने गाथा सूत्रों में कषाय प्रावृत को निबद्ध किया था। उन गाथा सूत्रों के समस्त अर्थ के जानने वाले आर्य मंक्षु और नागहस्ती नाम के आचार्य थे, उनसे अध्ययन करके यति वृषभ ने कषाय प्रावृत पर चूर्णी सूत्रों की रचना की थी। उक्त कषाय प्रावृत और उस पर रचे गए चूर्णी सूत्रों पर ही श्री वीरसेन स्वामी ने इस जयधवला नामक सिद्धांत ग्रंथ की रचना की है, वो उनके प्रतिज्ञा वाक्य से ही सिद्ध हो जाता है। अब हम आगे उनके समय वगैरह उन्होंने निश्चित किए, गुणधर्म कब हुए, क्या क्या हुआ। ये परसों वाचक की बात आई थी ना, महावाचक वगैरह, उसका अर्थ यहाँ लिखा है 40 पृष्ठ पर। वाचक किसको कहना, 40 पृष्ठ पर नीचे जो लिखा है वो बोल्ड में, इतना शंका वगैरह, उसके ऊपर लिखा है जय धवला में एक स्थान पर गुणधर को वाचक लिखा है, तो वाचक किसको कहना वो उसके नीचे देखते हैं। वाचक शब्द वाचना से बना है, ग्रंथ उसके अर्थ अथवा दोनों का देना वाचना कहलाता है। अर्थात जो साधु शिष्यों को ग्रंथदान और अर्थदान करते थे, उन्हें शास्त्राभ्यास कराते थे, वे वाचक कहे जाते थे। वाचक शब्द का यौगिक अर्थ तो इतना ही है। श्वेतांबर साहित्य में भी वाचक का यही अर्थ किया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वाचक एक पद था और वह पद उन आचार्यों को दिया जाता था जो अंगों और पूर्वों के पठन पाठन में रत रहते थे। ये वाचक संबंधी इतनी बात यहाँ आ गई। उपाध्याय में तो पूरे द्वादश अंग के लिए उपाध्याय कहते नहीं, यहाँ तो वाचक कहीं अंगों और पूर्वों के लिए वाचक कहा। अब यहाँ अलग अलग आचार्यों के परिचय दिए हैं। 46 पृष्ठ पर आना, 47 पर तो पूरी लिस्ट बनाई है उन्होंने, कहा महावीर के बाद, यानी महावीर स्वामी भगवान के बाद कौन कौन से आचार्य हुए, कैसी परंपरा हुई थी, उसकी बात यहाँ बताई है। 46 पृष्ठ पर लिखा है ना, पहले 62 वर्ष में 3 केवल ज्ञानी हुए, बाद में 100 वर्ष में 5 श्रुत केवली हुए, 183 वर्ष में 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए, उसके बाद 220 वर्ष में 5 11 अंग के धारी हुए और 118 वर्ष में 4 आचार अंग के धारी हुए। सो 683 वर्ष तक ये कुछ अंग के धारी हुए थे। और बाद में हमें पता है कि जो दर्शन आचार्य थे वो षटखंडागम की बात सिखा कर पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य ने षटखंडागम की रचना की थी। अब हम आते हैं, ये तो बहुत विस्तार से यहाँ काल संबंधी, राजाओं संबंधी बहुत बातें लिखी है। देखो एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, 64 पृष्ठ पर ये तत्वार सूत्र के जो है उमा स्वाति, उनको भी, उमा स्वामी को या उमा स्वाति को, उनको भी वाचक कहने में आया है। तो यहाँ जो बीच में बोल्ड में लिखा है उसको कहेंगे, नीचे से 3 पैराग्राफ तीनों उमा स्वामी के वाचक वंश का उल्लेख और उसी वंश में होने वाले अन्य आचार्यों का वर्णन श्वेतांबरीय पट्टावलियों, पन्नवन्ना और नंदी की स्थविरावली में पाया जाता है। वहां तो वाचक वंश कहा, परंतु ऐसा वंश नहीं मानते दिगंबरी, उनको वाचक जरूर मानते, उसकी बात अभी कहेंगे। ये दलीलें उमा स्वाति के श्वेतांबर परंपरा का मनवाती है और अब तक के समस्त श्वेतांबर आचार्य उन्हें अपनी परंपरा का पहले से मानते आए हैं। ऐसे होते हुए भी उनकी परंपरा के संबंध में कितने ही वाचन तथा विचार के पश्चात जो कल्पना इस समय उत्पन्न हुई है उसको भी अभ्यासियों के विचार से दे देना यहाँ उचित समझता हूँ। अब यहाँ नीचे लिखा है देखो, जब किसी महान नेता के हाथ से स्थापित हुए संप्रदाय में मतभेद के बीज पड़ते हैं, पक्षों के मूल बनते हैं और धीरे धीरे वे विरोध का रूप लेते हैं तथा एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्ष रूप से स्थिर होते हैं, तब उस मूल संप्रदाय में एक ऐसा वर्ग खड़ा होता है जो परस्पर विरोध करने वाले और लड़ने वाले एक भी पक्ष की दुराग्रही तरफदारी नहीं करता हुआ, यानी दुराग्रह यानी खोटाग्रह, अपने से जहां तक बने वहां तक मूल प्रवर्तक पुरुष के संप्रदाय को तटस्थ रूप से ठीक रखने का और उस रूप से ही समझाने का प्रयत्न करता है। मनुष्य स्वभाव के नियम का अनुसरण करने वाली यह कल्पना यदि सत्य हो तो प्रस्तुत विषय में यह कहना उचित जान पड़ता है, जिस समय श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पक्षों ने परस्पर विरोधी पने का रूप धारण किया और अमुक विषय संबंध में मतभेद के झगड़े की तरफ वे ढले, उस समय भगवान महावीर के शासन को मानने वाला अमुक वर्ग दोनों पक्षों से तटस्थ रहकर अपने से जहां तक बने वहां तक मूल संप्रदाय को ठीक करने के काम में पड़ा। इस वर्ग का मुख्य काम परंपरा से चले आए हुए शास्त्रों को कंठस्थ रख उन्हें पढ़ना पढ़ाना था और परंपरा से प्राप्त हुए तत्वज्ञान तथा आचार से संबंध रखने वाले सभी बातों का संग्रह रखकर उसे अपनी शिष्य परंपरा को दे देना था। जिस प्रकार वेद रक्षक पाठक श्रुतियों को बराबर कंठस्थ रखकर एक भी मात्रा का फेर न पड़े ऐसी सावधानी रखते और शिष्य परंपरा को सिखाते थे, उसी प्रकार यह तटस्थ वर्ग जैन श्रुत को कंठस्थ रखकर उसकी व्याख्याओं को समझता, उसके पाठ भेदों तथा उनसे संबंध रखने वाली कल्पना को संभालता और शब्द तथा अर्थ से पठन पाठन द्वारा अपने श्रुत का विस्तार करता था। यही वर्ग वाचक रूप से प्रसिद्ध हुआ, इसी कारण से इसे पट्टावली में वाचक वंश कहा गया हो ऐसा ज्ञान पड़ता है। अभी आगे भी बहुत सारे लिखा है कि उसको वाचक जरूर कहा है, परंतु उनके वंश वाले वो नहीं थे, यानी मूल में उन्होंने मूल परंपरा कायम रखते हुए तत्वार सूत्र की रचना की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। वो वीरसेन और जिनसेन के बारे में 67 पृष्ठ पर लिखा है उन्होंने कि वे उनके शिष्य थे और उन्हीं के समान, देखो यह नीचे लिखते हैं, ये वीरसेन आचार्य के संबंध में भी बहुत ये सब कुछ जान लेना चाहिए। देखो यहाँ पढ़ते हैं 67 में जहाँ गाथाएं पूरी हुई, उसके बाद ये जो प्रशस्ति लिखा है ना, लंबी प्रशस्ति जयधोला के अंत में पाई जाती है। इस प्रशस्ति के पूर्वार्ध में आचार्य वीरसेन के गुणों का वर्णन किया है और उत्तरार्ध में उनके शिष्य आचार्य जिनसेन का। इसमें संदेह नहीं कि आचार्य वीरसेन अपने समय के एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपनी दोनों टीकाओं में जिन विविध विषयों का संकलन तथा निरूपण किया है, उन्हें देखकर यदि उस समय के भी विद्वानों की सर्वज्ञ के सद्भाव विषय शंका दूर हो गई थी, तो उसमें अचरज नहीं है, क्योंकि इस समय भी उसे पढ़कर विद्वानों को यह अचरज हुए बिना नहीं रहता, एक व्यक्ति को कितने विषयों का कितना अधिक ज्ञान था। इसके साथ ही साथ वे दोनों सिद्धांत ग्रंथों के रहस्य के अपूर्व वेत्ता थे, षटखंडागम और कषाय प्रावृत्त, तथा प्रथम सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम के 6 खंडों में तो उनकी भारती आज्ञा के समान अस्खलित गति थी। संभवतः वे प्रथम चक्रवर्ती भरत के ही समान प्रथम सिद्धांत चक्रवर्ती थे। उनके बाद ही सिद्धांत ग्रंथों के ज्ञाताओं को यह पद दिया जाने लगा। सिद्धांत चक्रवर्ती हमने देखा, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, परंतु पहले ये सिद्धांत चक्रवर्ती हुए सिद्धांतों को जानने वाले। उनके आगम विषय ज्ञान और बुद्धि चातुरी को देखकर विद्वान उन्हें श्रुत केवली और प्रज्ञा श्रमणों में श्रेष्ठ तक कहते थे। 11 अंग और 14 पूर्व का पाठी न होने पर भी श्रुतावरण और वीर्यांतराय के प्रकृष्ट क्षयोपशम से जो असाधारण प्रज्ञा शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण द्वादशांग के विषयों का निस्संशय कथन किया जा सकता है, उसे प्रज्ञा श्रमण रिद्धि कहते हैं और उसके धारक मुनि प्रज्ञा श्रमण कहलाते हैं। श्री वीरसेन स्वामी की इस प्रज्ञा शक्ति के दर्शन उनकी टीकाओं में पद पद पर होते हैं। प्रशस्तिकार के इन उल्लेखों से पता चलता है अपने समय में ही वे किस कोटि के ज्ञानी और संयमी समझे जाते थे। वे प्राचीन पुस्तकों के पढ़ने के भी इतने प्रेमी थे कि वे अपने से पूर्व के सब पुस्तक पाठकों से पुस्तक पाठकों से बढ़ गए थे, यानी पढ़ने वालों से वो अधिक थे। उनकी टीकाओं में जिन विविध ग्रंथों से उद्धरण लिए गए हैं और उनसे सिद्धांत ग्रंथों की अनेक टीकाओं के संलोड़न का परिचय मिलता है, उससे भी उनके इन पुस्तक प्रेम का समर्थ होता है। इन साक्षात सर्वज्ञ सम प्रज्ञाश्रमणों में श्रेष्ठ श्री वीरसेन स्वामी के शिष्य श्री जिनसेन भी अपने गुरु के अनुरूप ही विद्वान थे। मालूम होता है कि वे बाल्यकाल से ही गुरुकुल में वास करने लगे थे, इसीलिए उनका कर्ण छेदन भी न हो सका था। वो बचपन में कान छेदते थे ना, वो विधि भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल आगे लिखा है कहीं 6 साल के थे तभी से वो रहने लगे थे। वे शरीर से कृश थे, अति सुंदर भी नहीं थे, फिर भी उनके गुणों पर मोक्ष लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही मुग्ध थी। एक वे और वे अखंड ब्रह्मचारी और परिपूर्ण संयमी थे, तो दूसरी ओर अनुपम विद्वान थे। इन दोनों गुरु शिष्यों ने ही इस जयधवला टीका का निर्माण किया है। प्रशस्ति के 35वें श्लोक से यह स्पष्ट है कि यह प्रशस्ति स्वयं श्री जिनसेन की बनाई हुई है, क्योंकि उसमें वे लिखते हैं, उस अनति प्रौढ़मती जिनसेन ने गुरु की आज्ञा से यह पुण्य शासन पवित्र प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति के 36वें श्लोक में लिखा है कि ग्रंथ का पूर्वार्ध श्री गुरु वीरसेन ने रचा और उत्तरार्ध शिष्य जिनसेन ने। अब उसमें आगे भी उन्होंने चर्चा की है कहाँ तक उसको पूर्वार्ध समझना और कहाँ से उत्तरार्ध, और फिर बाद में 1/3 वो वीरसेन आचार्य ने लिखा है और बाद में 2/3 वो जिनसेन आचार्य ने लिखा था। अभी उसकी भी चर्चा आगे लिखे। जरा यहाँ करेक्शन है, नीचे का पैराग्राफ है उसमें सेकंड लाइन, ये विभक्ति वो अनुयोगों ये वो अधिकारों के नाम बताए, तो पहले 4 विभक्ति उन्होंने लिखी है ऐसा कहना है उनका, इंद्र नंदी का। सेकंड लाइन में लिखा है ना, पेज दोष भक्ति, वो विभक्ति चाहिए क्योंकि आगे स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति, प्रदेश विभक्ति, ये विभक्ति के यानी वो अधिकारों के नाम है। नीचे का पैराग्राफ सेकंड लाइन, पेज दोष भक्ति के बदले वह विभक्ति चाहिए। अब हम 69 पेज पर आते हैं। ये कब पूर्ण हुई वगैरह वगैरह लिखे उन्होंने, ठीक है उसमें कुछ कहा है। एक बात है, देखो 69 पेज पर ये गाथाओं के नीचे जो है ना लिखा, उसकी अंतिम लाइन, अतः धवला से जयधवला अवस्था में भी 21 वर्ष और 4 मास के लगभग छोटी है, यानी धवला पूर्ण होने के बाद 21 साल और 4 महीने के बाद ये जयधवला पूर्ण हुई, यानी दोनों में 21 साल का गैप है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ कौन कौन से राजे कहाँ हुए थे, वीरसेन का काल कौन सा था, जिनसेन का कौन सा है, वो बराबर है। अभी 72 पृष्ठ पर आते हैं। ये जो नीचे का बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसके बीच बीच में जहाँ 700 लिखा है ना, उसके नीचे की लाइन 72 पेज 72 पेज 10वीं लाइन, वो पैराग्राफ की बड़ा पैराग्राफ की 10वीं लाइन जी, हाँ 700 लिखा है ना उसके नीचे की लाइन, जिनसेनाचार्य ने अपने को मिला, हाँ लक्ष्मी बे, अपने को अविद्ध कर्ण कहा, यानी जिसका कर्ण विंधा नहीं है, ऐसा अविद्ध कर्ण, इसका मतलब यह होता है कि कर्ण वेद संस्कार होने से पूर्व ही वे गुरु चरणों में चले आए थे तथा उन्होंने वीरसेन के सिवा किसी दूसरे को अपना गुरु नहीं बतलाया है। इससे प्रतीत होता है कि उनके विद्या गुरु और दीक्षा गुरु वीरसेन ही थे। संभवतः होनहार समझकर गुरु वीरसेन ने उन्हें बचपन से ही अपने संग में ले लिया था। यदि बालक जिनसेन 6 वर्ष की अवस्था में गुरु चरणों में आया हो, उस समय गुरु वीरसेन की अवस्था कम से कम 21 वर्ष की तो अवश्य रही होगी। अर्थात गुरु और शिष्य की अवस्था में 15 वर्ष का अंतर था ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ लिखी है कौन सी एज में क्या लिखा था। अब ये हो गया ग्रंथकार का परिचय। अब विषय परिचय को लेंगे और कल से अपना विषय भी शुरू होगा। विषय परिचय में भी हम पूरे संपूर्ण विषय को नहीं लेते हैं, थोड़ा ही उसके संबंध में देख लेते हैं। विषय परिचय में कर्म और कषाय की बात यहाँ तो प्रस्तावना में तो अलग अलग दर्शनों की अपेक्षा भी उन्होंने कंपैरिजन की है। 75 पृष्ठ पर आते हैं वो दूसरा पैराग्राफ। यह लिखा है इस तरह हम इस बात में प्रायः मिला अनेक दर्शनों का एक मत पाए जाते हैं कि अच्छे या बुरे कार्यों से आत्मा में एक संस्कार उत्पन्न होता है। अन्य मत क्या मानते हैं वो कर्मों की बात तो जैनियों के जैसी इतने स्पष्ट रूप से कोई नहीं कहता। वो तो भला करो भला फल पाओ और बुरा करो बुरा फल, कोई मानते कोई ऐसे आत्मा में एक संस्कार रह जाता है। तो यहाँ कहते जैन मत की यह विशेषता है वह अच्छे या बुरे कार्यों के प्रेरक विचारों से जहाँ आत्मा में संस्कार मानता है वहाँ सूक्ष्म पुद्गलों का उस आत्मा से संबंध भी मानता है। तात्पर्य यह है आत्मा के शुभ शुभ परिणामों से सूक्ष्म पुद्गल कर्म रूप से परिणत होकर आत्मा से बंध जाते हैं, वैध हुआ है बंध जाते हैं और समयानुसार उनके परिपाक के अनुकूल सुख दुख रूप फल मिलता है। अब उसके लिए उन्होंने और भी वहाँ दृष्टांत दिए, हम आगे बढ़ेंगे। 76 पृष्ठ। ये जो कषायों को राग द्वेष में जो विभाजन है ना वो बहुत अच्छी बात यहाँ कुछ बताई है। नए दृष्टि से उसका विभाजन किया है। तो हम तो हमेशा क्रोध मान माया और लोभ इन चार कषायों का नई दृष्टि से राग द्वेष में जो विभाजन है हम तो अभी तक तो ऐसे मान रहे क्रोध और मान वो द्वेष रूप है माया और लोभ वो राग रूप है। या कुछ अलग बात बताते यानी इसमें तीसरा पैराग्राफ ऊपर से तीसरा पैराग्राफ जहां वो हेडिंग दिया है कषायों का राग द्वेष में विभाजन उसका नीचे नयगम और संग्रह नय की दृष्टि से मिला क्रोध और पेज है 76 नयगम और संग्रह नय की दृष्टि से। हाँ क्रोध और मान द्वेष रूप है और माया और लोभ राग रूप है। अलग अलग नयों की दृष्टि से क्या है वो बताते हैं। व्यवहार ने माया भी द्वेष मानता है क्योंकि लोक में मायाचारी की निंदा ग्रह आदि होने से इसकी दृष्टि में यह द्वेष है। अलग अलग नयों की अपेक्षा कौन किस में आता है उसकी बात चल रही। रुजुसूत्र ने वर्तमान की बात करता है ना। रुजुसूत्र ने क्रोध को द्वेष रूप तथा लोभ को राग रूप समझता है। ये डायरेक्टली क्रोध है वो द्वेष रूप है और लोभ है वो राग रूप है। अन्य जो दो है ना मान और माया न तो राग रूप है और न द्वेष रूप है क्योंकि मान क्रोधोत्पत्ति के द्वारा द्वेष रूप है और माया लोभोत्पत्ति के द्वारा राग रूप है। जहाँ मान से क्रोध की उत्पत्ति होती है वो तो द्वेष रूप हो जाता है और माया में लोभ की उत्पत्ति होती है वो तो राग हो जाता है। परंपरा स्वयं नहीं यानी परंपरा से वो राग या द्वेष रूप हो जाते हैं स्वयं वो राग या द्वेष रूप नहीं है ऐसा रुजुसूत्र नहीं की अपेक्षा से कथन है। अतः यह व्यवहार रुजुसूत्र नहीं की विषय मर्यादा में नहीं आता। तीनों शब्दों ने चारों कषायों को द्वेष रूप समझते हैं। ये शब्द ने तीनों शब्द ने कौन से याद है। हाँ लक्ष्मी जी याद है शब्द ने तीन प्रकार के नहीं 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 सात नयों में से तीन नए शब्द नए हैं। नयगम वो व्यवहार रुजुसूत्र वो तो हटाओ अभी से। शब्द ने कौन से शब्द ने समभिरूढ़ ने और एवं भूत ने ये तीन शब्द नए हैं। वो तीनों शब्द ने चारों कषायों को द्वेष रूप मानते हैं। क्यों क्योंकि वे कर्मों के आश्रय के कारण होती ये नयों की अपेक्षा से इनका विभाजन कर दिया है। क्रोध मान और माया को ये पेज रूप नहीं मानते। और लोभ में कैसा किया है, लोभ यदि रत्नत्रय साधिक वस्तुओं का है, यानी हम कहते ना देवशास्त्र गुरु के संबंध में राग, तो लोभ यदि रत्नत्रय साधक वस्तुओं का है तो वह इनकी दृष्टि में पेज है यानी राग है। और यदि पापवर्धक पदार्थों का है वह पेज नहीं है, उसको राग भी नहीं कहा। आगे भी देखो, आगे के पैराग्राफ में रुजु सूत्र ने तथा शब्द नयों की दृष्टि में यह विशेषता बताई है, क्योंकि रुजु सूत्र ने वर्तमानता मात्र ग्राही है, वर्तमान को ही स्वीकार करता है, अतः वह क्रोध को सर्वथा द्वेष रूप मानता है तथा मान माया और लोभ को जब यह अपने में संतोष उत्पन्न करे तब राग रूप, और जब परोपघात में प्रवृत्ति करावे तब द्वेष रूप समझता है। उसमें भी और ये जो नया प्रमेय है इसलिए मैंने पढ़कर सुनाया। इस तरह इन नयों की दृष्टि में, नयों की बात है ना, यानी हम जो अभी तक कहते वो कुछ खोटा नहीं, वो तो है ही, उसको पहले लाइन में स्वीकार किया था, परंतु अन्य अन्य नयों से अन्य अन्य विभाजन होता है। इन नयों की दृष्टि में मान माया और लोभ विवक्षा भेद से राग रूप भी है और द्वेष रूप भी है। देखो देखो अब आगे के पैराग्राफ में नीचे से तीसरी लाइन, इस कषाय पाहुर ग्रंथ में इस भाव कषाय का तथा इसको उत्पन्न करने में प्रबल कारण कषाय द्रव्य कर्म अर्थात प्रत्येक कषाय का सविस्तार वर्णन है, यानी मोहनीय का, मोहनीय कर्म का, भाव कषाय का और उसके उत्पन्न होने में जो निमित्त जो मोहनीय कर्म है उसका विस्तार से वर्णन है। मुख्यतः इस कषाय पाहुड़ में चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय कर्म का विविध अनुयोग द्वारा में प्ररूपण है, उसका अधिकारों के अनुसार संक्षिप्त परिचय इस प्रकार का है। अब यह अलग अलग अधिकारों का क्या क्या विषय है उसको यहाँ बताया गया है। हम ये 14 अधिकारों के नाम ही यहाँ पढ़ेंगे और कल से अपना पहला अधिकार शुरू हो जाएगा। ये कषाय पाहुड़ का संक्षिप्त परिचय है उसको पढ़ेंगे हम नीचे से दूसरी लाइन। प्रकृत कषाय प्रावृत 15 अधिकारों में बटा हुआ है, उनमें से पहला अधिकार पेज्य दोष विभक्ति है, हमने पढ़ा था ना, ये पहले पुस्तक का अधिकार का नाम ही वही है। मालूम होता है यह अधिकार कषाय प्रावृत के, ये यह दिख रहा है कि हम बराबर नहीं आया, कषाय प्रावृत के पेज्य दोष प्रावृत दूसरे नाम की मुख्यता से रखा गया है। ये जो दूसरा नाम है उसी की मुख्यता से पहले अधिकार का भी नाम रखा है। अगले 14 अधिकारों में जिस प्रकार कषाय की बंध उदय सत्व आदि विविध दशाओं के द्वारा कषायों का विस्तृत व्याख्यान किया गया है, उस प्रकार पेज दोष का विविध दशाओं के द्वारा व्याख्यान न करके केवल उदय की प्रधानता से व्याख्यान किया गया है। यहाँ पर उदय की प्रधान सा है व्याख्यान है। तथा अगले 14 अधिकारों में कषाय का व्याख्यान करते हुए यथासंभव 3 दर्शन मोहनी को गर्भित करके और कहीं पृथक रूप से उनकी विविध दशाओं का भी जिस प्रकार व्याख्यान किया है उस प्रकार पेज्य दोष विभक्ति अधिकार में नहीं किया है, किंतु वहाँ उसके व्याख्यान को सर्वथा छोड़ दिया है, यानी उसके अन्य जो अवस्थाएं बनती उसकी यहाँ वर्णन नहीं है, उदय की अपेक्षा वर्णन मुख्यता से है। अगले 14 अधिकार ये है। यहाँ पर एक पहला अधिकार कौन सा देखा, पेज्य दोष विभक्ति अधिकार। आगे के अधिकारों के नाम यहाँ लिखते हैं, स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति, प्रदेश विभक्ति, झीणा झीण स्थित्यंतिक, ये पूरा नाम है ओ, बंधक वेदक उपयोग चतुस्थान व्यंजन दर्शन मोहोपशमना दर्शन मोह क्षपणा संयमा संयम लब्धि संयम लब्धि और चारित्र मोहोपशमना और चारित्र मोह क्षपणा, ये 15 अधिकारों के नाम हुए। इनमें से प्रारंभ के 3 अधिकारों में सत्व में स्थित मोहनीय कर्म का, सत्व में स्थित यानी सत्ता में, बंधक में मोनी के बंध और संक्रम का, ये जो बंधक पांचवा अधिकार है उसमें बंधक और संक्रम का वर्णन है। वेदक और उपयोग में यानी छठे और सातवें अधिकार में मोनी के उदय उदीर्णा और वेदक काल का। चतुस्थान यानी आठवां अधिकार में चार प्रकार की अनुभाग शक्ति का। व्यंजन नाम के नौवें अधिकार में क्रोधादिक के एकार्थक नामों का मुख्यतया कथन है। बाकी जो है आगे वाले शेष सात अधिकारों का विषय उनके नामों से ही स्पष्ट हो जाता है। आगे वाले जो बताए हैं, हाँ, दर्शमोह शमना वगैरह वगैरह, और बाकी जो स्थिति विभक्ति अनुभाग विभक्ति वगैरह। संक्षेप में इन अधिकारों का बंटवारा किया जाए तो यह कहना होगा, प्रारंभ के आठ अधिकारों में संसार के कारणभूत मोहनीय कर्म की विविध दशाओं का वर्णन है और अंतिम सात अधिकारों में आत्म परिणामों के विकास से शिथिल होते हुए मोहनीय कर्म की जो विविध दशाएं होती है उनका वर्णन है। ख्याल में ना, पहले तो मोहनीय कर्म से संसार की अवस्था कैसी कैसी बनती उसका वर्णन है, और बाद में आत्म परिणामों के कारण मोहनीय कैसा शिथिल होता है और उसमें यानी मोक्ष मार्ग पर लगे हुए कि कैसी कैसी अवस्था होती है मोहनीय कर्म की, उसका वर्णन है। अब यहीं रुकते हैं हम, और कल से पहले अधिकार से अपना शुरू हो जाएगा विषय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवा।